السلام عليكم، क्या हाल है गर्ल्स؟ अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हम सब अपने अपने घरों में बैठ के एक दूसरे से बात करने के आदि हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अपना सेशन नंबर 3 अल्लाह से दुआ करके शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया इवल मुरसलीन وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے آمین یا رب العالمین الحمدللہ ہماری आखिरी 10 सूरतों की इन डेप्थ स्टडी का आज तीसरा दिन है और आखिरी सूरत सूरतुन नास हमने कल की क्लास में शुरू कर दी थी। तारुफ के बाद हमने पहली आयत भी शुरू कर दी थी और पुल के आपके सामने कुछ मीनिंग्स मैंने रखे थे। सूरतुन नास के लिए स्कॉलर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मेंशन करते हैं जो शायद बहुत से पढ़ने वालों को फील नहीं होती या मिस कर जाते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत के अल्लाह ताला ने अपने मुसहफ अपने कलाम की आखिरी सूरत जो रखी वो ह्यूमैनिटी के नाम पर है, इंसानियत के नाम पर है। अन्नास इंसान की जमा है ना, तो जो सूरतुन नास है वो अल्लाह की मोहब्बत का एक मज़हर भी है इस तरह से कि अल्लाह ताला ने इसका नाम ह्यूमैनिटी के ऊपर रखा है। सूरतुन नास के आपको मैंने कल बताया था कि टोटल 6 आयात हैं। सूरतुन नास की आयात को 6 आयात को स्कॉलर्स दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3+3 करके वो इसको डिवाइड करते हैं। पहली 3 आयात सूरतुन नास की क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये अल मुस्तआज़ा बिही हैं। आपको अगर इस्तआज़ा की टर्म याद हो जो हमने कल बात की थी तो आपको पता चलेगा उसी से बना है, अल मुस्तआज़ा बिही, यानी इन पहली 3 आयात में उसका ज़िक्र है जिसकी हिफाजत हम मांग रहे हैं। तो अल मुस्तआज़ा बिही की टर्म आती है जिसकी हिफाजत मांगी जाए। अगली 3 आयात को कहा जाता है अरबी ज़ुबान में अल मुस्तआज़ा मिनहू, यानी जिसके शर से बचने के लिए हिफाजत मांगी जा रही है वो अगली 3 आयात में बयान किया गया है और उसको कहते हैं अल मुस्तआज़ा मिन्हु। तो ये इस तरह से आपको सूरतुन नास की 6 आयात दो हिस्सों में डिवाइडेड मिलती हैं। अब इंशाल्लाह हम अपनी पहली आयत को ही शुरू करेंगे और हमारा जो आज का चैप्टर है वो हमारा एक ही चैप्टर है जिसमें फर्दर आप 3 ब्रांचेस को समझेंगे। हमारा आज का चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद, जो आपके सामने इस वक्त पोस्टर पर लिखा हुआ भी आ रहा है। आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक, जिसको अल मुस्तआज़ा बिही की कैटेगरी में रखा जाता है, इसके अंदर एक ही चैप्टर है मेनली जिसको आप कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद कहते हैं। और फिर फर्दर आपको इसमें रब के मीनिंग्स मिलेंगे, मलिक के मीनिंग्स मिलेंगे और इसमें आपको इलाह के मीनिंग्स मिलेंगे। जब ये तीनों मीनिंग्स सिंक्रनाइज्ड हो जाते हैं तो हमारे पास एक यूँ समझ लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ तौहीद आ जाता है। इसलिए जो चैप्टर हम आज जितना कवर कर सकें इंशाल्लाह कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद। पहली आयत सूरतुन नास की, कुल कह दीजिए। अब आप जब आपको इन डेप्थ स्टडी कराने का मकसद ये होता है कि जब भी आप खुद इसको एक एक लफ्ज़ करके पढ़ें तो आपके जहन में कुछ ना कुछ मफहूम टकराता रहे। कुल कह दीजिए या आप कहिए अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं उसकी पनाह में आता हूँ जो लोगों का रब है। अब आपको आयत नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों में ये तौहीद का कॉन्सेप्ट, अल्लाह की इंट्रोडक्शन, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का तारुफ मिलेगा। एक बैकवर्ड स्टडी शुरू करने का बेसिक मकसद ये भी था कि इससे पहले कि हम बाकी सूरतों को पढ़ें, हम पहले अपने रब के तारुफ को दोबारा से ज़रा रिजुविनेट कर लें। तो आयत नंबर 1 भी रब की बात कर रही है, आयत नंबर 2 जो है वो मलिक की बात करेगी, आयत नंबर 3 इलाह की बात करेगी, और आपको खूबसूरती तौहीद के तीनों एस्पेक्ट की यहाँ पर नज़र आएगी। अगर आप कोई भी किताब तौहीद के ऊपर स्टडी करते हैं, तौहीद है, ईमानियात है, देन देर इज़ अनदर टर्म जो कि बहुत लेट जाकर डिस्कवर हुई इस्लामिक ट्रेडिशन में, जिसको अकीदा कहा जाता है। इन सब का एक ही मफहूम है, ईमान बिल्ला हो या अकीदा हो या आप उसको कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद कह लें, मोनोथीज़म, इन सब का मतलब एक ही आता है। तौहीद बेसिकली कुरान ने 3 हिस्सों में डिवाइड की है, और वो तीनों हिस्से मिलते हैं तो एक मुकम्मल डेफिनेशन सामने आती है। और खूबसूरत बात यह है कि वो तीनों हिस्सों का पहलू आपको सूरतुन नास की पहली 3 आयतों में मिलता है। अल्लाह ताला को अल्लाह के मुकाम पर रखने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। एक है जो पहली आयत में आया है रब्बुन नास के हवाले से, रब्बुन नास कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद इसके लिए आता है। मैं आपको इंशाल्लाह लिख कर ये भी दे दूंगी, तो अगर नहीं लिखा जा रहा, जो लोग लिखना चाह रहे हैं वो परेशान ना हो। पहला एंगल आता है अल्लाह के मुकाम को पहचानने में, उसको कहते हैं तौहीद रुबूबिया, रब से ही है रुबूबिया, रब से बना है रुबूबिया, और वही एसेंस आपको आऊज़ु बिरब्बिन नास में मिल रहा है। दूसरा एस्पेक्ट तौहीद का आता है तौहीद अल अस्मा व सिफात, यानी मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ अल्लाह एट्रीब्यूट एंड नेम्स, तौहीद अस्मा व सिफात, जो मलिक इन नास में आयत नंबर 2 में मिलेगा। तीसरा तौहीद का कॉन्सेप्ट आता है जो कि अल्लाह के मुकाम को वाज़े करता है, वो है तौहीदुल इबादा, तौहीदुल इबादा तीसरी आयत में आएगा इलाहिन नास, उस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल कर देगा। तो ये तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात, तौहीद इबादा, ये तीनों मिलकर कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद को मुकम्मल करते हैं। और अब इंशाल्लाह हमने वक्त लगाना है 3 आयात के ज़रिए तौहीद के इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। स्कॉलर्स के मुताबिक जिनको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कभी शिर्क की तरफ रुख नहीं करते, और अगर कभी गलती से उनसे कोई शिर्क का मामला हो जाए तो वो फौरन अपनी इस्लाह करने वाले बन जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने पिछली क्लास, कल की क्लास के हवाले से जहन में रखनी है, वो कुल के हवाले से याद रखिएगा कि हमने पहले ही इस दुआ को मांगते हुए अल्लाह के सामने अपने आप को हम्बल कर दिया है, और ये तौहीद का बेसिक कॉन्सेप्ट कहलाता है कि आप अल्लाह की मोहताज अपने आप को महसूस करें। जाहिर है जब उसके मोहताज बनेंगे तभी उसके अब्द बनेंगे ना, तभी उसको मालिक मानेंगे, तभी उसके मुकाम को पहचान सकेंगे। इसलिए अगर आपको और मुझे सूरतुन नास की ये 3 आयात समझ आ गई, सिर्फ 3 आयात, तो याद रखें आपकी ज़िंदगी में मकसद का रंग आ जाएगा। 3 आयात भी मिल गईं तो हमें अपनी ज़िंदगी का विज़न क्लियर होता हुआ नज़र आ जाएगा, और यही सबक हमने सूरत अल फातिहा में पढ़ा है। सूरत अल फातिहा यही सिखाती है कि टोटल डिपेंडेंसी, टोटल मदद के लिए इंसान की निगाह रब की तरफ हो। हम सूरह फातिहा में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से आखिरी दुआ और पहली दुआ का सिंक्रनाइज्ड हो रहा है। सूरह फातिहा की दुआ में मदद और सूरतुन नास में हिफाजत में तौहीद को पुख्ता कर दिया गया है। अल्लाह हमारी इबादत भी आपके लिए, हम मदद भी सिर्फ आपसे मांगते हैं, और हम हिफाजत में भी सिर्फ आपकी तरफ देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो तौहीद का है इसको डे टू डे लाइफ पर अप्लाई करें। टर्मिनोलॉजीज लिखना मुश्किल लगता है, और कभी कभी मुश्किल और टर्मिनोलॉजीज में और हम टेक्स्ट में थ्योरी में इतना उलझ जाते हैं कि हम प्रैक्टिकलिटी में तौहीद को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और हम ये नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में, बोल चाल में और चलने फिरने में ये तौहीद रिफ्लेक्ट करें। देखें, आप और मैं होमो सेपियंस हैं, इंसान हैं, अशरफुल मखलूक हैं। एवोल्यूशनरी स्केल के अंदर हम टॉप के ऊपर हैं तमाम क्रिएशंस में। हम इंसानों को अशरफुल मखलूक रिफाइंड क्रिएशन होने के बावजूद अल्लाह की मदद चाहिए होती है। कब चाहिए होती है अल्लाह की मदद? सिर्फ जब हम पर मुश्किल आ जाए तब? सिर्फ जब बीमारी आ जाए तब? नहीं, हमें अल्लाह की मदद और हमें अल्लाह की हिफाजत हर तरह के हालात में चाहिए होती है। बीमार को तो जाहिरी बात है बार बार अल्लाह की तरफ देखना ही पड़ता है, लेकिन तौहीद जानने वाला बिलीवर वो फिजिकली सेहतमंद होते हुए भी अपने आप को अल्लाह के सामने उतना ही कमज़ोर समझता है, अपने आप को दुनिया में इतना ही अल्लाह की हिफाजत के लिए मेहनत में लगाता है। देखें, आज से 8 महीने पहले जब मैंने ये बात की थी तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये बात कितनी वैल्यूएबल हो जाएगी। एक वायरस भी हमारे जिस्म में एंटर हो जाए हमें नहीं पता चलता। इस पैंडेमिक से पहले तो हमें शायद ये बात बस एक थ्योरी लगती थी साइंस की, एक वायरस आ गया। अब आज हम में से हर इंसान इसको बाकायदा इंटरनलाइज कर सकता है। ऑल्दो आप और मैं फिजिकल रिफाइनमेंट पर बनाए गए हैं तमाम मखलूकात में, लेकिन एक वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए हमें कहाँ पता चलता है? एक बैक्टीरिया जो ऑलरेडी हमारे जिस्म के कई ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट बैक्टीरियाज ऑलरेडी मौजूद हैं और वो हमारा एक डिफेंस सिस्टम चलाते हैं इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर, अगर कोई भी बैक्टीरिया किसी भी पोर्शन ऑफ द बॉडी का गलत डायरेक्शन में डिवेलप करना शुरू हो जाए, क्या कर सकते हैं हम? क्या पता चल सकता है हमें? कुछ अंदाज़ा नहीं हो सकता। इवन एक और छोटी सी बात, कहने को आप और मैं अपना साइज़ देखें और मच्छर का साइज़ देखें, तौहीद आपको और मुझे डे टू डे लाइफ में कॉन्स्टेंटली एक्टिव कर देती है, सोच विचार थॉट हर मामले में। एक छोटा सा मच्छर है, उसके भी काटने का हमें उस वक्त पता चलता है जब वो काट कर चला जाता है। आज भी तो अब पैंडेमिक आ गया तो सिचुएशन ऐसी चल रही है, वरना आज भी अगर आप डेमोग्राफिक्स निकालेंगे तो नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू मलेरिया। इतने लोग मलेरिया से मरते हैं, या मलेरिया है और फिर सेकंड नंबर पर इन्फ्लुएंजा आता है, नज़ला ज़ुकाम। इतना सा मच्छर है ना, लेकिन ये इतना सा मच्छर जो है ये ऐसा है कि आप और मैं इसके सामने रब की हिफाजत के मोहताज होते हैं। डेंगू फैलता है तो कितना फियर आता है, जगह जगह हम जो हैं वो कॉइल लगाना शुरू कर देते हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपने पास मॉस्पेल रखते हैं, तो वो एक फियर होता है ना, हिफाजत कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है। मच्छर जैसी मखलूक भी आपके और मेरे लिए डेडली हो जाती है अगर आप और मैं रब की हिफाजत में ना हो, ये हकीकत है। आज भी मच्छर को डेडलीस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और इसलिए कि वो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड लोगों को मारने की साल भर में वजह बन जाता है। आपको मालूम होगा, जस्ट टू डू अ कंपैरिजन, ताकि जब आप अकेले बैठकर तफक्कुर करें आपको पता चले, आपको और मुझे लगता है कि ओह मेरी क्या शान, मेरी क्या मजाल, मेरा क्या मुकाम। हम अपने आप को सोचते हैं ना, एक एक ऑ आती है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। अल्लाह ना करे कि नफ्स कभी इतना मोटा हो जाए, लेकिन एक मच्छर आपके और मेरे सामने क्या हैसियत रखता है और उसकी सोफिस्टिकेशन कभी देखें तो, रब ने क्या खल्क की है, क्या तख्लीक की है। आपको फीमेल मस्किटो बाइट करती है बिकॉज उसको जो है ब्लड चाहिए होता है अंडों के लिए, एग्स के लिए। मच्छर का जो नीडल, जिसको आम जुबान में हम नीडल कहते हैं, जो वो हमारी स्किन के अंदर ड्रिल करता है, उसको प्रोबोसिस कहते हैं। अगर उसको अंडर हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उस एक नीडल, एक प्रोबोसिस के अंदर 6 नीडल्स होती हैं। 2 ऐसी होती हैं जिसके ऊपर टाइनी टीथ होते हैं, जिसके ज़रिए वो सॉ करके आपकी स्किन को ड्रिल करके अंदर जाता है। 2 के ऊपर सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, और उनमें से एक नीडल होती है रिसेप्टर वाली, और एक नीडल होती है जो स्ट्रॉ की तरह हमारे अंदर से ब्लड को सक करती रहती है। और अगर यही मच्छर अपना स्लाइवा छोड़कर चला जाए तो उसके अंदर वायरस होता है, उसके अंदर पैरासाइट होता है और ये हमें बीमार करता है, ये हमारे लिए डेडली हो सकता है। ये है इंसान के सामने एक छोटी सी मखलूक, तो हमें तो कांस्टेंट रब की हिफाजत की ज़रूरत है, कांस्टेंट, हम एक लम्हा भी रब की हिफाजत के बगैर नहीं गुजार सकते हैं। आपकी और मेरी जो कैफियत होती है जब मच्छर काट के चला जाता है, जब वो काट रहा होता है हमें पता भी नहीं चल रहा होता है, कितनी ताकत है इंसान की। आज जितनी भी हमने हार्नेस कर ली है ताकत, आज जितना भी हमारे पास इस वक्त साइंटिफिक रिसोर्स आ गया है, कितना भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे चले गए हैं, कितने बायोकेमिकल वेपन्स हमने बना लिए हैं, कितने बंकर्स हमने उन एटॉमिक बॉम्ब से बचने के लिए बना लिए हैं, मोहताजी अपनी कभी नहीं भूलनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ सूरतुन नास। उस रब की मोहताजी मेरे दिमाग में स्टिक हो जाए, मुझे हर लम्हा, हर दिन, हर साल अपने रब का मोहताज अपने आप को समझ के उसकी हिफाजत मांगनी है, चाहे मुझे कितनी भी हिफाजत मिल जाए। आज ये जो COVID-19 का वायरस है, ये भी हमारे जिस्म में दाखिल होने से पहले हमसे पूछता नहीं है, हेलो मैडम, कैन आई एंटर इन योर बॉडी और इन योर नेजल पैसेज? नहीं, वो तो आ जाता है, आपको और मुझे पता भी नहीं चलता और कई दिनों के बाद उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। सो वी ह्यूमन, वी आर वीक क्रिएटेड बींग्स, इसलिए अल्लाह ने हमें दुआएं मांगना सिखाया है, इसीलिए अल्लाह ने हमें टूल्स दिए हैं। जब कोई कमज़ोर होता है तो उसको टूल्स दिए जाते हैं ताकि वो अपना दिफा कर सके, अपना डिफेंस कर सके। अब किससे आप अपना डिफेंस मांगते हैं? अपनी हकीकत को पहचानने के बाद, अन्नास होते हुए मैं अपनी हकीकत को पहचानते हुए किसकी हिफाजत में आ रही हूँ, ज़रा जाने तो कौन है वो। कुल अऊज़ु बि रब्बिन नास, वो तो इंसानों का रब है, ये रब कौन होता है? आपको डिक्शनरीज के अंदर और तफसीर के अंदर इसके ऊपर किताबों की किताबें और सफ़ों के सफ़े मिल जाते हैं कि रब लिंग्विस्टिकली क्या होता है। बहुत इम्प्लिकेशंस आपको इसकी, बहुत मफाहीम आपको इसके मिलते हैं। बट सबसे पहले रब को पहचानने से पहले, रब के इंट्रो से पहले, अपनी हकीकत हमने जान लिया ना, जितनी ये जहन में रहेगी उतना रब हाई पेडिस्टल पर महसूस होगा, उतना रब की पावर को हम महसूस कर सकेंगे। तो बहुत सी मीनिंग्स होती हैं, बट मैं आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन रखूंगी जो इमाम रागिब अस्फहानी ने अपनी किताब में मेंशन की है रब की। इंशाल्लाह इसकी भी आपको अरबी जो है वो मैं लिखी हुई दे दूंगी। इमाम रागिब अस्फहानी जो सिंपल मफहूम इसका कहते हैं रब का, वो कहते हैं कि रब का मतलब है लॉर्डशिप, एब्सोल्यूट लॉर्डशिप, अल्लाह का ऐसा आपका मास्टर होना जिससे बड़ा मास्टर कोई हो नहीं सकता। अच्छा, ये नोट करते जाएं साथ साथ, रब का लफ्ज अरब पहले से आपस में भी एक दूसरे को टाइटल देने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, बिकॉज ऑनरशिप के लिए आता था रब का लफ्ज, तो एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जैसे अरब कहा करते थे रब्बु अब्दिन, ये तो हो गया अल्लाह का बंदा, इस तरह से वो कहा करते थे रब्बुल बैत। अब ये रब्बुल बैत जो है घर का मालिक, ये वो आपस में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल भी करते थे कि ये फलां का घर है और फलां इस घर का मालिक है, तो वो रब्बुल बैत की टर्म इस तरह भी इस्तेमाल किया करते थे। अल्लाह ताला ने अपने लिए जो रब की इस्तलाह इस्तेमाल की है और उसको मुख्तलिफ आयात के शेड्स के साथ हमें समझाने की पूरी कोशिश की है, जिस दिन आप और मैं वो समझ जाएंगे ना, अगर हमें अल्लाह के और किसी नाम की समझ नहीं भी हुई, हम अपनी दुआ में या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन कह कह कर उसको पुकारेंगे। और जितना आप और मैं अपनी मुश्किल में उसको पुकारते हैं, ये रब है, इस रब के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन है, ये रब है जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा करने की सलाहियत रखता है। फिजिकल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स तो पूरी हो ही रही है ना, रब के अंदर मफहूम आता है कि जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करने की सलाहियत रखता है। तो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर उस रब से जब मांगा जाएगा तो आपको वो रब अपने वाकई बहुत करीब महसूस होगा। इमाम रागिब लिखते हैं कि रब इतना प्रोफाउंड लफ्ज़ है कि इसको किसी भी और ज़ुबान में एक ही लफ्ज़ के साथ ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। तो वो इसके छः टर्म्स बताते हैं, मिनिमम इंसान छः टर्मिनोलॉजीज अपने जहन में रखे कि रब की डेफिनेशन उसको समझ आ जाए, रब है कौन। पहला वो कहते हैं अर मन हुआ रब, रब कौन है, हुवल मालिकू, रब मालिक है। यानी रब जो है, अब ये इसके अंदर रब के अंदर मफहूम है मालिक का, कैसा मालिक है रब। देखें मालिक तो आप और मैं भी होते हैं, आपके हाथ में इस वक्त हो सकता है मोबाइल फ़ोन हो, आप कहेंगी कि मैं इस मोबाइल की मालिक हूँ, आपके पास लैपटॉप हो, आप कहेंगी मैं इस लैपटॉप की मालिक हूँ। तो एक मालिक हम भी होते हैं और एक मालिक अल्लाह भी है। लेकिन याद रखें अल्लाह कैसा मालिक है, जैसा मालिक कोई हो ही नहीं सकता। कहने को हम कहते हैं ये मेरा जिस्म है और मैं इसकी मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँ इस पे कपड़े पहनूँ, मैं जैसे चाहूँ फेशियल कराऊँ, मैं जैसे चाहूँ कटिंग कराऊँ, मैं जो चाहूँ अपने लिए चीज़ें अडॉप्ट करूँ। मगर याद रखिए हमारी लिमिट है, ये जिस्म कम्प्लीटली मेरा नहीं है, ये वेसल मेरे पास तो मौजूद है रूह का कैरियर, लेकिन ये कम्प्लीटली मेरे कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह ऐसा मालिक है जिसके कंट्रोल में हर चीज़ है। मेरे जिस्म के अंदर कौन सी बीमारी ग्रो कर जाए ये मुझे नहीं पता चलेगा, कब कौन सी खराबी आ जाए ये मुझे नहीं पता चलेगा। तो मेरी ओनरशिप पार्शियल है। अल्लाह ऐसा मालिक होता है, वन ऑफ द कॉनोटेशन ऑफ रब, वो ऐसा मालिक है जिसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट लॉर्डशिप है, सब उसके कंट्रोल में है। तो याद रखें इसी टेक्स्ट को जहन में रखते हुए, अगर अल्लाह के सामने ये जुमला इस्तेमाल किया गया, अल्लाह के अहकामात के सामने ये जुमला इस्तेमाल किया गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, देन देर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। अगर दुनियावी हुकूक़ मांगने के लिए और रेप और इंसेस्ट से अपने आप को बचाने के लिए बोला तब आपका जुमला ठीक है, बट जुमले का इस्तेमाल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई इबहाम ना रहे। रब के अहकामात के सामने बोला मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, नाउ इट हैज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो रब के अंदर एक मफहूम आता है मालिक होने का, दूसरा मफहूम रब के अंदर आता है अल मालिकु व सय्यदु। सैयद कहते हैं, जिसे आप आसान उर्दू में सरदार से समझ सकती हैं, सैयद कहते हैं कोई मुकम्मल इख्तियार रखने वाला, जो मुकम्मल अथॉरिटी के साथ चीज़ों को मैनेज करता रहे, उसको कहते हैं सैयद। मिसाल के तौर पर आप एक मुकाम रखती हैं अपनी औलाद के ऊपर, तो आप अपनी औलाद पर सैयद हो सकती हैं, इन अ वर्ल्डली सेंस टर्मिनोलॉजी इंसान के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। पर जैसा सैयद अल्लाह है, जैसी अथॉरिटी अल्लाह की है, ऐसी हम में से किसी की नहीं है, इवन हमारी अपनी औलादों पर भी वैसी अथॉरिटी नहीं है। इसलिए कि आप और मैं ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी औलाद पर सैयद हो गई तो अब मैं जैसे चाहूँ उनके साथ सलूक करूँ, जैसे चाहूँ खुदा ना खास्ता उनको बुली करूँ, जैसे चाहूँ खुदा ना खास्ता उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश कर दूँ। नहीं, आप और मैं जवाबदेह होंगे। तो रब के अंदर कॉनोटेशन है अल मालिकु, रब के अंदर कॉनोटेशन आती है व सय्यदु, तीसरी रब के अंदर कॉनोटेशन आती है वल मुरब्बियू। वल मुरब्बी, ये जो वल मुरब्बी की टर्म आती है इससे आपको पता चल जाएगा तरबियत करने वाला, दर्जा बदर्जा किसी चीज़ को क्लाइमैक्स पर पहुंचाने वाला, दर्जा बदर्जा स्टेप बाय स्टेप किसी को ग्रोथ के साथ आगे से आगे बढ़ाने वाला। अल्लाह मुरब्बी है, अल्लाह जानता है कि आपके और मेरे जिस्म को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह उसी हिसाब से हमारे लिए चीज़ों को मुहैया करता जाता है। रब के अंदर मुरब्बी होने का मफहूम है, जब भी कहते हैं चैरिशर नरिशर, वो जो कॉन्स्टेंटली हमारी ग्रोथ के लिए हमें सस्टेनेंस प्रोवाइड करता रहता है। तो वल मालिकु व सय्यदु वल मुरब्बियु, फोर्थ वन वल मुर्शिदु, असल मुर्शिद तो अल्लाह है, असल सही रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला, नेकी की तरफ इनकरेज करने वाला। आप और मैं जब कहते हैं ना कि मुर्शिद कौन होता है, असल में कौन होता है, वो जो आपको नेकी की तरफ इनकरेज करे। किसी इंसान के लिए भी आप ये इस्तिलाह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल मुर्शिद कौन है? अल्लाह सुभाना व तआला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल। इसलिए कि वो हमें सही डायरेक्शन देता है, वो हमें सही रास्ता दिखाता है। वल मुर्शद, अल्लाह मुर्शद है। वल मालिकु व सैयदु वल मुरब्बियु वल मुर्शद वल क़य्यिमु। अल्लाह वो है जिसने मेरी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखा हुआ है, अल्लाह ने मुझे कायम रखा हुआ है। आज आप और मैं ज़िंदा हैं, आज आप और मैं सांस ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसकी इजाज़त है, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी सांसों का तार जोड़कर रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे लिए ज़िंदगी की सहूलियात मुहैया की हुई हैं। मैं सिर्फ इसलिए ज़िंदा हूँ। एक एक लफ्ज़ जब हम बोलें, पूरे शऊर के साथ बोलें, तो वल क़य्यिमु, वो इस वक्त मुझे कायम रखे हुए है, मेरे हर रिश्ते को कायम रखे हुए है, इस दुनिया को कायम रखे हुए है, इस सोलर सिस्टम को कायम रखे हुए। विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर ज़मीन अपनी ऑर्बिट से हटती है, देयर विल बी अ ह्यूज डिज़ास्टर, कुछ नहीं बचेगा। आप में से जिन्होंने मेरे साथ पिछली मरतबा सूरतुर रहमान स्टडी की थी, हमने उसमें यूनिवर्स के बहुत से सीक्रेट्स ओपन किए थे इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड साइंस। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर ज़मीन अपने ऑर्बिट से और अपने एक्सिस से हिलेगी, एक डिग्री भी हिलेगी, तो ज़मीन तबाह हो जाएगी, सोलर सिस्टम में कॉन्स्टेंट डिस्टर्बेंस आ जाएगी। वल क़य्यिमु, सिक्स एंड द लास्ट वन इन द कॉनोटेशन ऑफ रब, यू विल फाइंड द मीनिंग्स। वल मुनइम, मुनइम इनाम से है। कौन है अल्लाह? नेमतें देने वाला, इनाम देने वाला। और याद रखिए, उसकी दी हुई नेमतें वो आपका और मेरा हक नहीं होता। अल्लाह मुनइम है, जब हम कहते हैं ना रब्बुल आलमीन, इसलिए कि वो मुनइम है, वो मुझे इतना देता है जो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा देता है जो मैं डिज़र्व नहीं करती। वो मेरी पर्सनैलिटी और मेरे गुनाहों और मेरी शख्सियत के मुताबिक नहीं देता, वो अपनी अता और अपने ख़जानों के मुताबिक देता है। वल मुनइम, वो इनाम देने वाला है, उसकी हर नेमत मेरे लिए एक गिफ्ट है, एक्स्ट्रा बोनस है, उसका फ़जल है, उसकी अता है। ये है वल मुनइम, वो मुझे वो देता है जो मैं डिज़र्व भी नहीं करती। तो ये मफहूम रब कहते हुए मेरे जहन में आए, कुल अऊज़ु बिल रब्बिन नास। जब आप बोलें तो रब से ये छः मफहूम आपके जहन में आए, अल मालिक व सैयद वल मुरब्बी वल मुर्शद वल क़य्यिम वल मुनइम। फिर एक और बहुत खूबसूरत एंगल, जो जब भी रब का लफ्ज़ आप पढ़ें, चाहे सूरतुन नास में पढ़ें चाहे कहीं भी पढ़ें, हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने इसी लफ्ज़ से अपने आप को रसूलों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया है, रब के नाम से। अल्लाह ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़र्स्ट टाइम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, पहली वही, पहली आयत, इक़्रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक। अल्लाह ने रब के नाम से रसूल अल्लाह के सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब अपना तारुफ कराया, इसी रब के लफ्ज़ से करवाया। सूरह ताहा की आयत नंबर 12 में आता है, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब पहाड़ पर बुलाया था, आग को देखते हुए वो वहाँ पहुँचे थे, तो उनको वहाँ आवाज़ आई थी, या मूसा इन्नी अना रब्बुक, ए मूसा मैं ही तुम्हारा रब हूँ। फ़ख़ला नअलैक इन्नका बिवादिल मुक़द्दसी तुवा, अपने स्लिपर्स उतार दो, तुम एक इस वक्त पाक मुक़द्दस वैली में जगह पर मौजूद हो। मुझे और आपको अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ कराया है, मुझे और आपको अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ करवाया है सूरह फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ہر نبی کی دعوت میں آپ کو کانسٹنٹلی قرآن میں ملے گا او عبدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. سو دس رب از دا بیسک کانسیپٹ آف توحید، جس کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایسنس ہے، توحید کا ایسنس ہے اس رب کے لفظ میں. جو اس کو سمجھ جائے گا وہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہمیشہ رب کی رسی کو تھامے رہے گا. آپ کو اور مجھے اللہ کو رب کے طور پر ایکسیپٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے عبد بنا کر رکھنا ہے. آپ نے ان دو فیلنگز کے ساتھ زندگی میں جو ڈیسیجن لیا، انشاءاللہ آپ توحید پر قائم رہیں گی. جب آپ اوبیڈینس پر اور توحید پر قائم رہیں گی، آٹومیٹیکلی وہ جملہ یاد رکھیں، رب کی پروٹیکشن سے پہلے رب کی اطاعت ضروری ہوتی ہے. دس از دا پوائنٹ. آج بہت سے لوگ اللہ کو مالک، رب، ماسٹر مان لیتے ہیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ وہ خود کو اس کے سلیو کی پوزیشن پر نہیں لا پاتے ہیں.